कैसा था بعض الخروج والأعضاء الصحيحة. فتعالي ذلك الله أنك تشكر منك وتعالك أسان كما يصار بكاء इसके पहले जो प्राकृत्य हुए हैं उसमें क्या क्या रूप आत्मान में जो अलग अलग रूप है उसमें जो और ऐसा रूप लगता है जो बड़ा विचित्र हो जब भगवान कहते हैं कहते भगवान पर रूप बड़ा विचित्र हो कौन से ऐसे रूप भगवान ने और करे हैं उनमें भी बड़ा विचित्र रूप एक रूप महारूप धारण किया और मत्स्य रूप धारण किया और कौरव रूप धारण किया और हाइब्रिड रूप धारण किया। ये जो रूप का धारण करना है ये अलग अलग रूप क्यों धारण हो गए? भगवान साक्षात अपने को जिस रूप में है उसी रूप में क्यों नहीं स्वरूप है भगवान का वो कौन सा है? एक्चुअल रूप असली रूप असली स्वरूप पद्म पुराण में इसका उल्लेख कहते हैं कि मैं कैलाश लोक के सदन मन में तपस्या कर रहा हूं तो मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर लक्ष्मीपति विष्णु अपने वाहन गरुड़ पर सवार होकर मेरे समक्ष प्रकट हुए और मुझसे कहने लगे रुद्र मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं तुम भगवान। इससे दो बातें निकल के आ गई कि शिवजी तप कर रहे हैं तपस्या कर रहे हैं स्मरण कर रहे हैं किसके प्रति प्रकट हुए वरनाम के रूप में वरनाम के। अब शिवजी जो है उनसे क्या वरनाम है क्या डिमांड किया कि मुझे क्या चाहिए? कैलाश लोक के स्वामी तो है जिनकी कौन से रूप में रहते उन्होंने बताया कि मैं आपके ओरिजिनल स्वरूप को देखना चाहता हूं जिसको लोग मनोहर मूर्तिधारी परात्पर सच्चिदानंद के नाम से पुकारते हैं मुझे उस स्वरूप के दर्शन करना। तो भगवान विष्णु से कहते हैं कि उस स्वरूप के दर्शन करने हैं तो तुम्हें यमुना के पश्चिमी तट पर वृंदावन नाम ग्राम में आना पड़ेगा। वहां तुम मेरे उस मनोहर मूर्ति धारी परात्पर निष्क्रिय सच्चिदानंद स्वरूप के दर्शन कर शिवजी पार्वती से बता रहे हैं कि मैं आकाश मार्ग से जो है यमुना के पश्चिमी तट पर वृंदावन नामक ग्राम में पहुंचा। तो मैं वहां क्या देखता हूं कि एक कुंज के अंदर एक गोपाल खड़ा षोडश 16 वर्षीय और उसने अपनी बाई गोहनी जो है एक षोडशी बालिका के कंधे पर टिका रखी मुस्कुरा रहा है दूसरे हाथ में बांसुरी है सर पे मोर का पंख है और चारों तरफ गोपियों का समूह। मुझे दिखते ही उसको बालक ने कहा आओ रुद्र तुम मेरे जिस स्वरूप में दर्शन करना चाहते थे वो तुम्हारे समक्ष है। और है समझ। मेरे इस स्वरूप को लोग अपने चर्म चक्षुओं से नहीं देख सकते, इसलिए लोग मुझे अरूप या निराकार भी कह रहे हैं। मेरे गुण असीम हैं, जिनको सीमा में नापा नहीं जा सकता, बांधा नहीं जा सकता, इसलिए लोग मुझे निर्गुण भी कह रहे हैं। तो उसमें बहुत अच्छा व्याख्यान है, उसी में फिर भगवान चर्चा करते हैं कि मेरी प्रिया राधिका जी हैं, मेरे को प्राप्त करने का साधन इनके रास्ते से हो गया था। जो इनको प्राप्त कर लेता है, जो उनकी भक्ति कर लेता है, वो मुझे प्राप्त कर सकता है। फिर उसके बाद ये बताते हैं कि मैं इन लोगों के सम्मोहन में इस कदर लिप्त हूं कि मैं कभी वृंदावन छोड़कर नहीं जाता। भगवान अपने बारे में स्पष्ट कहते हैं कि मैं कभी वृंदावन छोड़कर नहीं जाता। भगवान का जो स्वरूप है वो मानता है। जैसे जैसे आवश्यकता होती है, उस आवश्यकता के अनुरूप भगवान के रूप को धारण करता है। तो यहां पर आवश्यकता क्या आ रही है? यहां आवश्यकता आ रही है भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने से कभी नहीं चूकते। जो शब्द है अच्युत, भगवान के लिए शब्द इस्तेमाल होता है अच्युत। अच्युत का अर्थ क्या है? अच्युत के दो अर्थ है। एक अर्थ है जो अपनी स्थिति से कभी नीचे नहीं गिरता, अपनी स्थिति पर बना रहता है। भगवान ने अर्जुन के सारथी का कार्य स्वीकार किया, परंतु फिर भी भगवान रहे, ड्राइवर नहीं कहलाए। साथी होने के बावजूद भगवान की अपनी स्थिति अक्षुण है, वो कभी नीचे नहीं आते। और दूसरा इसका अर्थ है कि जो अपने भक्तों की रक्षा करने से कभी नहीं चूकते। तो यहां जो है क्या चर्चा आ रही है कि प्रहलाद महाराज की रक्षा करने के लिए भगवान ने अपने आप को नरसिंह देव के रूप में प्रकट किया। एक और वैष्णवाचार्य कथा लिखते हैं, कारण बताते हैं। लौल्य अर्थात लालच हमें है, लालची है ना हम लोग, क्या लालच करते हैं? लालच कुछ करते हैं, भौतिक संसार के प्रति आकर्षित है, भौतिक संसार के सुख भोग भोगने का हमें लौट जाएगा। जब भक्त बन जाते हैं या भक्त बनने का प्रयास करते हैं, भौतिक करते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में, तो हमारा नॉलेज जो है परिवर्तित हो जाता है, तो हमारा कृष्ण की सेवा के प्रति नॉलेज बढ़ जाता है। भौतिक संसार का आकर्षण समाप्त होना शुरू हो जाता है, खत्म होना शुरू हो जाता है, और दिन प्रतिदिन हमारा जो है कृष्ण के प्रति समर्पण का, कृष्ण के प्रति सेवा का हमारा भाव जो है, हमारा लौल्य, हमारा लालच जो है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। अगर हम में लालच है और हम भगवान का अंश है, ये बात सब लोग जानते हैं, हमारे वंश जीवन होता है, तो इसका मतलब यह है कि हमारे अंदर जो लालच है वो भगवान से आना चाहिए, तो भगवान की लालच होनी चाहिए, चाहिए भाई। नमक का अंश है ना, समुद्र का अंश है, गिलास पानी लिया जाए तो नमक जो है समुद्र में भी है, नमक उस गिलास पानी में भी है, नमक उस एक बूंद में भी है जो समुद्र से ली जाए। तो हमें लालच है, इसका मतलब है कि जिसके हम अंश हैं उसके अंदर भी लालच है। तो भगवान में क्या लालच है, भगवान में कैसा लालच है, किस प्रकार का लालच है? लालची तो है ना, तो भगवान में कैसा लालच उसको होना चाहिए? भक्तों को अपने लीलाओं का आनंद देने का लालच है, भक्तों के प्रेम का आदान प्रदान, भक्त प्रेम करते हैं तो भगवान भी उनसे प्रेम करते हैं, आदान प्रदान का लक्ष्य। और तो एक लेक्चर में इस होलीनेस गौर गोविंद स्वामी बताते हैं कि लॉ जो है वो कई बार भगवान अपनी जो उनकी विभूतियां हैं, जो उनके ऐश्वर्य हैं, उसके प्रति भी लालच करते हैं। तो उन्हें लॉ ने जागृत हुआ कि मैं समस्त बल का स्वामी हूं, मुझसे ज्यादा बलशाली और कोई नहीं। कोई है उनसे बलशाली? शायद इन्हें पूतना का बल करके दिखा होगा, इससे ज्यादा बलशाली और कौन होगा? शायद इनका बालक जो है पूतना का वध करती है। तो वो जो लॉल है वो उनके मन में एक भाव आया कि मेरे को अपने बल का प्रदर्शन करना चाहिए, मुझसे ज्यादा बलशाली कोई नहीं है, मुझे उस बल का आनंद लेना चाहिए, बस एंजॉय। अब उसका बल का आनंद लेना है तो कैसे लिया जाएगा? तो इसके लिए एक जो कंडीशन है कि भगवान के धाम में भगवान की इच्छा हो, या उनके साथ जो लोग रह रहे हैं उनकी इच्छा हो, वो कभी भी अपूर्ण नहीं रहते। भगवान के धाम में और इस भौतिक संसार में जहां हम रह रहे हैं, इस धाम में एक मुख्य अंतर है। मुख्य क्या अंतर है कि भगवान का धाम जो है चिंतामणि धाम कहलाता है, कहलाता नहीं कहलाता, और ये धाम मणि चिंता धाम कहलाता है। हर समय व्यक्ति को लक्ष्मी कैसे आएगी, धन कैसे आएगा, मनी कैसे आएगा, इसकी चिंता नहीं है। हर समय सोते जागते उठते बैठते जो है उसको मनी की चिंता नहीं रहती है कि मुझे कैसे प्राप्त होगा। तो उस चिंता मनी धाम के अंदर एक जो क्वालिटी है कि कोई भी इच्छा जो अपूर्ण नहीं रहती, सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती। अब वो पूर्ण करेगा कौन, कैसे होगी? तो उसके लिए जिम्मेदारी है योग माया, रिस्पॉन्सिबिलिटी है योग माया। योग माया उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए ऑर्गेनाइज करती है, अरेंजमेंट करती है। क्या अरेंजमेंट किया? कि ब्रह्मा जी के जो चार कुमार भगवान के दर्शन करने के लिए आ रहे थे, उनको जय और विजय के द्वारा अनुभवा दिया। रुक गए तो श्राप दिया, पृथ्वी पर जाओ और असुर योनि को मान मनावर हुई, रिक्वेस्ट किया गया, क्षमा मांगी गई, पश्चाताप है, प्रायश्चित है, जो भी अल्टीमेटली एग्रीमेंट कितने में हुआ, 3 जन। तो पहली बार में आप बनेंगे हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष, दूसरी बार रावण और मोहम्मद, तीसरी बार शिशुपाल और धर्म। अब तीसरा स्कंद पढ़ते हैं, उसमें जो है भगवान का बड़ा रूप है, राक्षस से बहुत भयंकर युक्त है, भगवान ने अपने बल का प्रदर्शन किया है। उस बल के प्रदर्शन के लिए भगवान को जो है बड़ा रूप धारण करना। अब बाकी कथा आपने सारी जो है साथ स्कंद में पढ़ी है कि किस प्रकार से हिरण्यकश्यपु का क्रोध है, भगवान विष्णु को दुश्मन समझना चालू कर दिया है, कैसे कैसे उसने जो है अल्टीमेटली प्रहलाद महाराज को प्रताड़ित किया। हिरण्यकश्यपु ने एक वर प्राप्त किया, उपासना करी, खूब प्रार्थनाएं करी, स्तुतियां करी, तपस्या करी। जब भी कोई दैत्य या कोई असुर या कोई व्यक्ति तपस्या करता है तो सबसे ज्यादा कष्ट किसे होगा? इसको इंद्र को। क्या कष्ट होता है? मेरा पोजीशन ना छिनना है, करता, मतलब इतने उच्च पोजीशन पे होते हुए भी उसके अंदर भय जो है वो व्याप्त है, उसे छुटकारा नहीं है, भय से छुटकारा है कि मेरी पोजीशन न हिल जाए तो दूसरा व्यक्ति मुझे विस्थापित न कर दे, इसके लिए उसको डर लगा रहता है। तो उसके बचाव के लिए कौन सामने आता है? ब्रह्मा जी। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा का क्या बोल दिया? उसने क्या ब्रह्मा कहा कि मुझे अमृत को प्रदान कर दीजिए, मुझे अमर बना दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जो चीज मेरे पास नहीं है मैं तुझे कैसे दे सकता हूं, कुछ और मान लो, इसको छोड़ दो, कुछ और मान लो। राजनीति जानता है, नीति विशारद है, बुद्धि है, तो अपनी बुद्धि का प्रयोग करके वो ब्रह्मा जी से अमृत की नई परिभाषा करता है कि मैं कोई ऐसी स्कीम लगाऊं, तो ऐसा प्रोजेक्ट बनाऊं कि जिससे मेरे को मृत्यु की प्राप्ति ना हो। तो सोचता है कि मृत्यु कैसे हो सकती है, या तो मनुष्य मुझे मार सकता है या पशु मार सकता है। तो सबसे पहले तो इन दोनों से छुटकारा पाया है कि ना मैं पशु से मरूं और ना ही मनुष्य से। चलो अगर मृत्यु आनी है तो ऐसा इंतजाम किया जाए कि फुल प्रूफ किया जाए। तो फुल प्रूफ करने के लिए अगला उपाय क्या किया कि ना दिन में मरूं ना रात में, ना अंदर मरूं ना बाहर, ना धरती पर मरूं ना आकाश में, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से। मतलब अपने आप को उसने जो है एक तरीके से सुरक्षित कर लिया। अब जो है अब चीजें मानते जा रहे हैं और मेरे को मेरे डिमांड के अनुसार, मेरी इच्छा के अनुसार जो है वरदान मिलता जा रहा है। अब इतना प्राप्त कर लिया है और दुश्मनी किससे निभा रहा है, किसके पीछे पड़ा हुआ है? भगवान विष्णु। अपना पुत्र जो है जो भक्ति के मार्ग में जा रहा है उसको वहां से हटाने का प्रयास प्रताड़ित कर रहा है, दुख दे रहा है, कष्ट दे रहा है, पहाड़ से नीचे फेंक देना, अग्नि द्वारा जलाया जाना, सांप द्वारा डसवाना, हाथियों से कुछ लगाया जाना, सब कुछ कर देते हैं। परंतु प्रहलाद महाराज का बाघ भी माता नहीं सकता, कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर पाया। यहां जो सुगत प्रकरण चल रहा है, जो सुगत जो है चर्चा चल रही है कि भगवान ने कहा कि मेरे को जो है अभी शक्ति का जो प्रदर्शन किया था उसका पूरा आनंद नहीं आया, मुझे अभी और आनंद चाहिए, नंबर एक। और साथ ही साथ एक और इच्छा का उदय हुआ, इच्छा आई कि मैं वात्सल्य रस का अंदर आनंद लेना चाहता, मुझे वात्सल्य देना है, क्योंकि मैं तो पुरुषोत्तम भगवान हूं, तो मुझे अपने वात्सल्य मेरे अंदर के भरा हुआ है उसका आनंद अपने भक्तों को देना है। तो कैसे दिया जाए? तो ये दोनों वर्ग पर अरेंजमेंट जो है ये होते हैं इस नरसिंह भगवान के प्राकृत। जब प्राकट्य हो रहा है तो उन्होंने अपना प्राकट्य किया खंभे से, खंभे से किया रूप क्या धारण किया प्राकट के बाद उग्र की अनुग्रह उग्र पांडव होगा हिरण्य के शब्दों का वध किया गया। आजकल में कोई पिछले दिनों में राधा पास साक्षी मंदिर गया है इसी हफ्ते पिछले हफ्ते 15 दिन जाकर नहीं है क्या किया जितना खास बात होगी लक्ष्मी नरसिम्हा की जो बेबीज हैं अगर आप साउथ में जाएंगे, आंध्र प्रदेश भी साउथ में ही काउंट करिए, उसके बाद आप कर्नाटक जाइए, तमिलनाडु जाइए, केरल जाइए, वहां पर आपको लक्ष्मी नरसिम्हा की बेबीज मिलेंगे। तो हर जगह आपको लक्ष्मी नरसिम्हा मिलेंगे। और भगवान ने हिरण्यकशिपु का वध करने के बाद हार कहां धोए, खून से सने हार कहां धोए, वो कहां बंगाल में, कहां कहां लीलाएं हुई है, कैसे हुई है, कैसे यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां हुआ है, ये समझने में हमारी बुद्धि अभी असमर्थ है, हम नहीं समझ पाए। ये बात लोग क्वेश्चन करते हैं कि जब हमारा मुल्तान में गया, कि हमारा आंध्र प्रदेश में गया, कि हमारा साउथ में गया, तो आप मुझे बंगाल में पड़ गए वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारी चर्चाएं आती हैं कि ऐसा क्यों हुआ। पर कितने लोगों ने नरसिंहपल्ली के दर्शन किए, क्या खासियत है वहां की, वो जो गिनती है वो स्वयंभू प्रकट है, बनाई नहीं है किसी, नोबडी इज कॉम्पिटेंट, जैसे जयपुर से बनी, यहां से बनी, वहां से बनी, ऐसा कुछ हुआ है पत्थर के ऊपर किसी ने कार्य करी नहीं, वो स्वयंभू प्रकट है, धरती के अंदर से प्रकट हुई। और बहुत ध्यान से देखेंगे, ध्यान से तो आपको उनकी गुरुदेव प्रहलाद महाराज दिखाई दे है, नीचे सामने बैठे हैं या उनके पास प्रहलाद महाराज का नीति। दक्षिण भारत में आप जहां भी जाएंगे वहां पर जहां लक्ष्मी नरसिम्हा की दीदीज है, वहां या तो प्रहलाद महाराज सामने हाथ जोड़े खड़े हैं, या सामने बैठे हैं, या गोदी में बैठे हैं। तो भगवान ने जो अपने उस दौल्य का आनंद लिया है कि मेरे को वात्सल्य रस देना, अब भगवान का दौल्य समाप्त नहीं होगा, चल रहा है, दौड़ रहा है, और क्या लौल्य आ रहा है कि वात्सल्य दे तो दिया, दिया नहीं, वात्सल्य देना भी। फिर मन में आती बात, मेरा जन्म खंबे से हुआ, खंबे से प्रकट हुए ना, तो मन में क्या बात है कि मेरा जन्म जो है खंबे से हुआ है, तो माता पिता कौन हुए, अम्बा। तो मेरे को तो भाई असली माता पिता से आनंद लेना है, वात्सल्य लेना है, मुझे उस स्वाद का, उस रस का भी आनंद चाहिए। तो अब जो है भगवान अपने आप में प्रकट करते हैं राम जी के रूप में, तीन माताओं का प्रेम मिल रहा है, दशरथ जैसे पिता का प्रेम मिल रहा है, और वात्सल्य की अति कोई कमी नहीं है, वात्सल्य सारे अयोध्या वासियों से आनंद मिल रहा है, वात्सल्य। कौन ऐसा है जो राम जी को प्रेम नहीं करता, पूरी अयोध्या में कौन ऐसा है जो उनसे प्रेम नहीं करता। तो जो भगवान की लीलाएं हैं जो चल रही है, इसके अंदर तो हम देखते हैं कि भगवान भी लीला रचते हैं। तो यहां उन्होंने अपने आप को प्रकट किया है आधे सेन और आधे मीना के रूप में, बड़ा फियर्सम रूप का, हिरण्यकश्यप को जैसा व्यक्ति है, इतना पावरफुल था, वो आश्चर्यचकित है कि क्या विचित्र प्राणी प्रकट होता है, मारा तो मैंने पत्थर को था, खंबा पत्थर का या अब तो सीमेंट का बनता है, पहले तो पत्थर के बनते थे, पहले खंबे किस चीज के बनते थे, अगर दक्षिण भारत के मंदिरों में जाओ तो वहां जो पिलर्स हैं, जो दीवारें हैं, किसकी बनी हुई है, जैसे कैसे हुआ, सीमेंट की बनी है, सीमेंट बन दिया उसके अंदर, वो सारे बड़े बड़े बॉक्स, बड़े बड़े छोटे छोटे पत्थर है। मैं बहुत आश्चर्यचकित हुआ जब मैं पहली बार साउथ इंडिया गया, तो हम यहां पर खरीदते हैं ग्रेनाइट, आजकल भी लगा है, किचन में लगता है, लोग दीवारों के सामने लगा देते हैं, आजकल तो फर्शों में लग रहा है, सीढ़ियों में लग रहा है, मतलब ग्रेनाइट यूज कर। तो मैंने वहां पर देखा कि सड़क की जो बाउंड्री होती है, कितने सीमेंट के आए पत्थर लगाते हैं ताकि कंडीशन बन जाए, वो सड़क की बाउंड्री ग्रेनाइट के पत्थरों से बनी, ठीक से नहीं हुए, डिसाइड नहीं करी हुई है, पर वहां भी तो वो डॉक्स है कर्नाटक में, तो वो खानों से पत्थर निकले हुए हमारे यहाँ माटी बांधे निकलते हैं, पत्थर के लोग दीवार भी बना देते हैं, पत्थर से सड़कों की साइड भी बना देते हैं, तो उन्हीं पत्थरों से बने हुए पिलर्स हैं। अड़क पर लाभ चले जाइए आप, श्रीगंधम चले जाइए आप, किसी भी मंदिर में चले जाइए, उन्हीं पिलर्स के जो है वो ऊपर बीम्स भी है, उन्हीं के पिलर्स है उनके ऊपर खड़ा है, इतना वहां पर जब पत्थर उस पत्थर के ऊपर इस पर घुसा नहीं मार सकते, सीमेंट की दीवार के ऊपर उस पत्थर पर घुसा मारे कितने पावर चाहिए, और फिर उस पर जब भगवान प्रकट हो रहे हैं। तो रणा कश्यपू ने यह समझा था कि मैं तो पत्थर को क्या है, पत्थर टूटने वाला थोड़ा है कि मेरे मुख का वादा शुरू किया जाएगा, हनुमान को सोच भी क्या हो जयवंतर से क्या निकलने वाला है, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, और जब सडनली तेज आवाज आई और तेज आवाज आने के बाद उसमें से जो है विचित्र पानी का उदय हुआ, तो देख के हैरान आश्चर्यचकित हूं कि क्या हो गया, कैसा हो गया, कौन निकल आया इसमें से बाहर, तो ये जो चित्रता है उसको परेशान कर रहे। इसके बाद जब आगे पढ़े इसके अंदर तो उसने भगवान के रूप को ध्यान से देखा, उनका रूप इतने सोने की तरह था, मेरा मेरा सारी माता क्या थी, पर इसमें चर्चा आ रही है कि भगवान जब अपने आप को प्रकट करते हैं तो असुर जो है उनकी लीला को नहीं समझ, चर्चा आ रही है परस शक्ति विधिदेह विश्व के स्वभाव की ज्ञान बल इच्छा, ज्ञान बल और इच्छा, ये तीनों शक्तियां जो है भगवान के अंदर पूर्ण रूप से खड़ी है, समस्त ज्ञान के स्वामी, समस्त बल के स्वामी, और उनके साथ उनकी इच्छा शक्ति है उसके अनुसार जो है उनकी शक्तियां जो है आगे जो डिवाइड करते हैं चीजें करते हैं, अलग अलग तरीके से देखते हैं कि भगवान अपनी इच्छा से कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, उसमें जो है उनकी हेल्प करती है योग माया, योग माया से आवृत रहते हैं, मूल पर डिपेंड करता आप भी अपने जीवन के अंदर अनेक रूप धारण करते हैं, परंतु आपकी शक्ल सूरत नहीं बदलती, मूड बदलता है, मूड बदलता है। आप ऑफिस गए तो बॉस हो गए, रॉ मार रहे हो, रॉ छाप रहे हो सबॉर्डिनेट्स के ऊपर, ऑफिस के अंदर ही आपका बॉस सामने आ गया, उसने आगे जो बोले सबॉर्डिनेट ऊपर उससे डांट खा ली, डांट खा भी गए हैं, डांट मार भी गए, डांट मार रहे हैं और उस वक्त बॉस की पोजीशन में है, डांट खा रहे हैं तो आप बॉस नहीं है, बॉस की तरह घर में रहते हैं, पत्नी से बात करते हैं तो पति का रूप है, पुत्र से बात करते हैं तो पिता का रूप है, माता पिता से बात करते हैं तो पुत्र का रूप है, मूड अलग अलग है, जिस तरह की बात पत्नी के साथ करते हैं वैसी बात माता पिता के साथ नहीं कर सकते, और जो बात माता पिता के साथ करते हैं वो पत्नी के साथ नहीं करते, वो डिफरेंट होता है। आप अपने परिवार के अंदर संबंधियों से मिलने जाते हैं, भाई के अंदर जाते हैं तो आपका मूड डिफरेंट है, डिफरेंट तरीके से गिफ्ट लेके जाते हैं, डिफरेंट तरीके से बातचीत करते हैं, बहन के अंदर जाते हैं तो मूड डिफरेंट होता है, व्यक्ति तो सेम है परंतु उस वक्त जो है उसको एक मुखौटा धारण करना पड़ता है, मूड को अपना अलग से धारण करना पड़ता है, पर व्यक्ति में बदलाव नहीं आता। यहां क्या है कि मूड भी डिफरेंट है और फॉर्म भी डिफरेंट है, हम लोगों की फॉर्म चेंज नहीं होती, मूड चेंज होता है, पर भगवान की जो है मूड भी चेंज होता है और फॉर्म भी चेंज होती है, किस प्रकार के अवतार के लिए किस प्रकार की आवश्यकता है और उनके अनुसार मुझे क्या मूड धारण करना। चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट किया तो क्या मूड था, भगवान तो भगवान है, भगवान की जो भगवत्ता है उसमें कुछ चेंज आता है क्या, शक्तियों में बदलाव आता है, भगवान के पास जो पावर्स है उसमें तो बदलाव आता है नहीं आता, पर मूड क्या आ गया, सिखानी है तो मुझे भक्त का रूप धारण करना है, और मुझे भक्त की तरह सारे क्रिया खराब करना है, मुझे भक्त की तरह अपने आप को मूव करना है, अपने आप को करना है। तो भगवान जो है उनका प्रकट जो है अलग अलग मूव्स के अंदर अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पर अलग अलग समय पर होता है। तो ये जो है एक विचित्र रूप प्रकट किया है भगवान ने, यहां पर ब्रह्मा जी का वरदान भी छूटा ना हो, क्यों ना हो, कि भगवान जो है गौ ब्राह्मण हितायुष और ब्राह्मणों के हित की चिंता करता है, कि मेरे अगर मैं ब्रह्मा जी के वरदान को छूटा बना दूंगा तो ब्राह्मणों की चिंता तो समाप्त हो गई ना, अगर गौ ब्राह्मण हितायुष कैसे कहना होगा, तो मुझे गौ ब्राह्मण के हित की चिंता करने वाला कहलाने के लिए वो कार्य करना जिससे कि ब्रह्मा जी का वरदान भी झूठा ना हो और कार्य भी हो जाए। इसलिए भगवान ने अपने आप को नरसिंह भगवान के रूप में प्रकट किया। नरसिंह देव भगवान की जय, श्री गोपाल की जय, श्री कृष्ण प्रभु की जय।